अभी सौभाग्य है अपना कि समर्थ रामदास जी के व्यक्तित्व और विचार का प्रसार ही जिनका जीवन है, ऐसी महान हस्ती आचार्य धर्मेंद्र जी, जो समर्थ रामदास स्थापित ज्ञानपीठ के उत्तराधिकारी है, यहां उपस्थित है। हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उनके मार्गदर्शन का यह सुनहरा मौका हासिल करते हैं। आचार्य जी, वर्तमान युग में श्री समर्थ रामदास जी की क्या प्रासंगिकता है?
दो प्रकार के लोग होते हैं, सामान्य जन और असामान्य, लोकोत्तर उनको कहना चाहिए। लोकोत्तर जो सामान्य जन से बहुत ऊपर उठे हुए, जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, सिद्ध होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, ईश्वर स्वरूप होते हैं, दृष्टा होते हैं, सृष्टा होते हैं, त्रिकालज्ञ होते हैं और दूर तक आने वाले भविष्य में जो आने वाले युग को और परिणामों को देखने में सक्षम होते हैं, तो सामान्य जन के लिए ये प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता का प्रश्न पैदा होता है। निश्चय ही मनुष्य क्षणजीवी है, मनुष्य का देह भी, उसका अस्तित्व भी क्षणभंगुर है, इसलिए क्षणभंगुर अल्पजीवी जो मनुष्य हैं वे अप्रासंगिक होते हैं। जैसे फैशन अप्रासंगिक होता है, आता है जाता है, स्टाइल्स जो हैं वो अप्रासंगिक हो जाते हैं, आउट ऑफ डेट हो जाते हैं। जहाँ तक समर्थ सद्गुरुदेव का प्रश्न है, समर्थ सद्गुरुदेव लोकोत्तर महापुरुष हैं और उनके भक्त भारत में सर्वत्र विश्व में जहाँ जहाँ हैं उन्हें हनुमान भगवान का अवतार मानते हैं। समर्थ गुरुदेव सामान्य जन नहीं हैं, लोकोत्तर महर्षि हैं, महापुरुष हैं और इस प्रकार के लोगों की कभी प्रासंगिकता कभी समाप्त नहीं होती। जिस प्रकार ईश्वर की प्रासंगिकता, जिस प्रकार आकाश की प्रासंगिकता, जिस प्रकार पवन की प्रासंगिकता, जिस प्रकार जल की प्रासंगिकता, जैसे अग्नि की प्रासंगिकता, जैसे पृथ्वी की प्रासंगिकता कभी नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार जो सद्गुरुदेव होते हैं उनकी कभी प्रासंगिकता नष्ट नहीं होती, समाप्त नहीं होती। यही सबसे बड़ा अंतर है। कुछ लोग अपनी मृत्यु के बाद नहीं, अपने जीवन में ही अप्रासंगिक हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो आंधी के समान आए और तूफान के समान चले गए, अब उन्हें कोई स्मरण नहीं करता और यदि स्मरण भी करेगा तो उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं रही। किंतु काल बाधित जो लोग हैं उनसे ये कालजयी महापुरुषों का चरित्र और उनका चिंतन बिल्कुल पृथक होता है। और समर्थ सद्गुरुदेव कल जितने प्रासंगिक थे, आने वाले युग में भी उतने ही प्रासंगिक रहेंगे। आज तो वे प्रासंगिक हैं ही, इसलिए उनके संबंध में प्रासंगिकता या अप्रासंगिकता का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए, क्योंकि वो जन नहीं हैं, वे सुजन भी नहीं हैं, वे महापुरुष हैं, वंदनीय विभूति हैं, महर्षि हैं। महर्षि वो होता है जो भविष्य में देख सकता है, भूत के संपूर्ण अनुभवों को संचित करके जो नवनीत निष्कर्ष निकालता है और अपने शिष्यों को, अपने युग को प्रदान करता है, और उनकी वो प्रासंगिकता सदा सदैव प्रलय पर्यंत ज्योंकि त्यों रहती है।
400 बरस पुराना यह समर्थ साहित्य आज के जमाने के लिए कैसे उपयुक्त है?
केवल 400 साल, 400 वर्ष जो हैं वो बहुत अधिक लंबा कालखंड नहीं होता, किंतु ये समझना चाहिए कि हमारी जो परंपरा है वो 1,97,60,00,000 वर्षों पुरानी परंपरा है। और इस परंपरा में जो ऋषियों की परंपरा, महर्षियों की परंपरा, मुनियों की परंपरा, संतों की परंपरा, वैज्ञानिकों की, दार्शनिकों की, तत्वज्ञों की, कवियों की, चिंतकों की, ये महान परंपरा अरबों साल, 2 अरब साल तो हो ही गए, और वो निरंतर अभिवृद्ध हो रही है, क्षीण नहीं होती, क्योंकि वो पुरातन परंपरा नहीं है, सनातन परंपरा है। और उस सनातन परंपरा की अगर आयु देखी जाए तो वो 2 अरब साल पुरानी परंपरा है, और समर्थ तो केवल 400 साल पहले ही अवतीर्ण हुए, और उन्होंने जो कुछ अनुभव किया वेदों के, उपनिषदों के, पुराणों के, ब्राह्मण ग्रंथों के, काव्यों के, महाकाव्यों के, संत साहित्य के अध्ययन से, स्वाध्याय से, सामान्य लोगों को तो अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन इस प्रकार की ईश्वरीय विभूति प्राप्त जो महापुरुष होते हैं उनको बोध होता है, उनको शोध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए सद्गुरुदेव ने जो अपना सबसे बड़ा जो प्रसाद ग्रंथ हमको प्रदान किया है उसका नाम शोध नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का मतलब है भारत की खोज। भारत कोई खोज करने की चीज नहीं है। और फिर भारत के हृदय में, यानी गंगा यमुना सरस्वती के संगम के तट पर, तीर्थराज प्रयाग में जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ हो, जिसके पुरखे भारत माता के मस्तक से, हिमालय की उपत्यकाओं से आए हों, और वो व्यक्ति भारत में पैदा होने वाला आदमी ये कहे कि मैंने भारत की खोज की है, तो भारत ढूंढने की चीज नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य ढूंढने की चीज नहीं है, जैसे चंद्रमा को ढूंढा नहीं जाता, जैसे बादलों को ढूंढा नहीं जाता, जैसे आकाश को ढूंढा नहीं जाता, जैसे अग्नि को ढूंढा नहीं जाता, जैसे धरती को ढूंढा नहीं जाता, धरती तो हमारे अस्तित्व का अंग है, उस प्रकार से भारत भी ढूंढने की चीज नहीं है। सूर्य के समान भारतवर्ष की जो विशेषता है, उसका जो प्रकाश है, उसका जो विभास है, वो स्वयं ज्ञापित है, वो प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जब मैं यहां पर आया तो हमें 10 जगह पूछना पड़ा कि कौन सी शेरी में, कौन सी गली में जाना है, गणपति मंदिर कहां है, गणपति मंदिर के पास कहां, हमको ढूंढना पड़ा। तो ये शोध है, ये खोज है, ये डिस्कवरी हो गई। हम जब यहां पहुंचे तो हमने ऐसा अनुभव किया जैसे हम हिमालय के माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए हों। ये शोध है, ये खोजना है, ढूंढना है। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा डिस्कवरी, क्यों? उसके लिए डिस्कवरी रही होगी, क्योंकि भारतीयता के, भारतीय परंपरा के बोध से बिल्कुल अपरिचित रखा गया उसे। वो स्वयं अपने लिए कहता है कि मेरा पालन पोषण हुआ मुसलमानों के बीच में, मेरी शिक्षा दीक्षा हुई अंग्रेजों के बीच में, और मैं एक्सीडेंटली हिंदू के घर में पैदा हो गया। तो ऐसा व्यक्ति यदि भारत की खोज करे तो समझ में आता है, लेकिन भारत तो स्वयं प्रकाशित है। तो उसी प्रकार से जो ज्ञान है वो स्वयं प्रकाशित है, और समर्थ इस प्रकार के महापुरुष हैं कि उनको शोध करने की जरूरत नहीं, उनके अंतःकरण में बोध होता है। इसलिए उन्होंने अपना जो नवनीत है ज्ञान का, अनुभव का, उसका नाम दास शोध नहीं रखा है, उन्होंने उसका नाम रखा है दास बोध। जो बोध के रूप में ज्ञान उनके अंतःकरण में जागृत हुआ, प्रकाशित हुआ, और वो बोध हमको प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ, उनको परंपरा से प्राप्त हुआ, उन्होंने परंपरा का ये निष्कर्ष हमें प्रदान किया। क्योंकि समर्थ के जीवन को हम देखते हैं तो हमें समर्थ के किसी प्रत्यक्ष गुरु की अनुभूति नहीं होती है। हनुमान भगवान भी कहां जाकर पढ़े? हनुमान भगवान से के बारे में कहा जाता है कि वे भगवान सूर्य से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। सूर्य यानी संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले, अंधकार का नाश करने वाले। गुरुदेव के बारे में हमारे यहां कहा जाता है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के तिमिर से आच्छन्न अंधकार में, अज्ञान के अंधकार ने जिसके मन को और जिसकी बुद्धि को ढक रखा है, अज्ञान तिमिरांधस्य, और जो आंखें होते भी जो लोग अंधे हैं, तो नयनोन्मीलितम येन चक्षुरुन्मीलितम येन, जो उनके चक्षुओं को अपने ज्ञानांजन की शलाका से खोल देते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उसी प्रकार से गुरुदेव कौन है, गुरु कौन है, जो प्रकाशित होता है और प्रकाशित करता है। जब तक जो व्यक्ति प्रकाशित नहीं होगा, स्वयं प्रकाशित नहीं होगा, दूसरों को प्रकाशित नहीं करेगा। फ्यूज बल्ब किसी को प्रकाशित नहीं कर सकता। कटआउट अगर किसी का उड़ जाएगा, कनेक्शन यदि उसका कट जाएगा मेन लाइन से, तो वो कहीं प्रकाशित नहीं कर सकता। तो हमको गुरुदेव के बारे में पता नहीं लगता कि उनका प्रत्यक्ष गुरु कौन है। और हनुमान भगवान का प्रत्यक्ष गुरु भगवान सूर्य हैं, और वो स्वयं प्रकाशित हैं, रुद्र हैं, स्वयं रुद्र हैं, और उनके अवतार जो समर्थ गुरु रामदास हैं हनुमान में और उनमें दोनों में साम्य है, वो भी रामदास हैं, ये भी रामदास हैं, वो भी निष्काम हैं, ये भी निष्काम हैं, वो भी निर्वैर हैं, ये भी निर्वैर हैं, वो भी निष्प्रिय हैं, ये भी निष्प्रिय हैं, वो भी निर्भय हैं, ये भी निर्भय हैं, वो भी स्वयं प्रकाशित हैं, ये भी स्वयं प्रकाशित हैं। तो इसलिए उनके मन में यानी राम के दास के मन में जो बोध उत्पन्न हुआ, स्वयं जागृत हुआ, कैसे जागृत हुआ, जैसे प्राची में, जैसे पूर्व दिशा में सूर्य उदय होते हैं, उसी प्रकार से हमारे सद्गुरुदेव के मन में बोध जागृत हुआ, प्रकाशित हुआ, और वो बोध उन्होंने अपने अनुगामियों के लिए हमको प्रसाद के रूप प्रदान किया। तो दास बोध है, शोध नहीं है। जो पवित्र अंतःकरण के महापुरुष होते हैं उनमें बोध जागृत होता है, वो ढूंढते नहीं फिरते। जो स्वयं रास्ता ढूंढ रहा है वो दूसरों को रास्ता क्या बतलाएगा। हमारे यहां बताया गया है महाजनों ये नगतः सपन्था, जो महाजन हैं वो आगे आगे चलते हैं और पीछे पीछे उनके सारा संसार चलता है, और जो रास्ता बनाते हैं, जिस रास्ते पर वो चलते हैं वही राजपथ बन जाता है अभ्युन्नति का, अभ्युदय का, हाईवे जिसको अंग्रेजी में हाईवे कहते हैं, उच्च मार्ग। और वो उच्च मार्ग जो है वो प्रकाशपूर्ण है। दास बोध की एक एक ओवी ये चिंतन का सूत्र है, और सूत्र जो है वो उस सूत्र उसे कहते हैं जो बीज होता है, जैसे एक छोटे से बीज, वटवृक्ष का जो बीज होता है ना वो राई के दाने से भी छोटा होता है, और उस एक वटवृक्ष में बढ़ के एक फल में हजारों बीज, एक बीज की जो यानी मेजरमेंट है उसका वो राई के दाने के बराबर, और उस राई के बराबर दाने वाला जो बीज है उसमें कम संपूर्ण वटवृक्ष की पूरी संभावना, उसका पूरा एग्जिस्टेंस उसमें समाया हुआ है। वो जब अनुकूल उसको पवन मिलता है, अनुकूल जब उसको पानी मिलता है, अनुकूल उसको खाद मिलती है, अनुकूल उसको सुरक्षा मिलती है, तो विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। उसी प्रकार से एक एक ओवी ये ज्ञान का एक बीज है, और उसकी जब आप उसका चिंतन करते जाएंगे तो नित्य नवीन उसमें से अर्थों का उन्मेष होता चला जाएगा, और वो अर्थ जो हैं वो काल बाधित नहीं है, वो किसी एक समय के लिए नहीं है, एक काल के लिए नहीं है, कि युग के लिए नहीं है, वो तो युगातीत हैं, और वो कालजयी हैं सूत्र सारे। वो आज भी प्रासंगिक हैं, कल भी प्रासंगिक रहेंगे, और आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि जो सत्य है वो कभी भी अप्रासंगिक नहीं होता। आदि सचू, जुगादि सचू, है भी सचू, नानक होसी भी सचू, वो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा। सार्वकालिक सत्य जो है उसकी किरणों का संग्रह है दासबोध, यानी एक ज्वाज्वल्यमान सूर्य है जिसकी किरणें अनंत काल तक, 2 अरब साल से हम जानते हैं सूर्य को, जब से हमारी पृथ्वी बनी, उसके पहले से सूर्य रहे होंगे, लेकिन हम तो 2 अरब साल से जानते हैं, और 2 अरब साल में सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्रताप, सूर्य का प्रभाव, और सूर्य का जो के जो गुण हैं वो जरा से भी कम नहीं हुए। उसी प्रकार से दास बोध की जो ज्ञान की किरणें हैं वो कल भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक हैं, आगे भी प्रासंगिक रहेंगी, वो कभी पुरानी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि वो पुरातन नहीं है, वो सनातन है। इसलिए समर्थ गुरुदेव की और उनके साहित्य की प्रासंगिकता के बारे में प्रश्न करना या जिज्ञासा होना ही व्यर्थ की बात।
समर्थ युग से आज का युग बिल्कुल ही अलग है। तकनीकी वैज्ञानिक दिशा में बहुत बदलाव आ गया है। जीवन दृष्टि लोग कहते हैं वैज्ञानिक बन जा रही है। ऐसी स्थिति में 400 बरस पुराना ज्ञान क्या पूर्वग्रह ग्रासित नहीं समझा जा सकता है?
पूर्वाग्रह कहते हैं, उस पूर्वाग्रह को दूसरा अगर शब्द दिया जाए तो उसको कहेंगे अंधविश्वास। परिस्थितियां बदलती हैं लेकिन सत्य नहीं बदलता। सत्य का स्वरूप, सत्य कल भी अपरिवर्तनीय, आज भी अपरिवर्तनीय। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि 6 महीने तक अपने गुरुओं के पास रह करके तुमने क्या सीखा है। प्रहलाद जी के जो गुरु थे मूल रूप में वो नारद थे, लेकिन नारद की शिक्षा रास नहीं आई हिरण्यकश्यपु को, क्योंकि हिरण्यकश्यपु नास्तिक था। तो उन्होंने प्रहलाद ने जब अपना बोध या अपना जो कुछ भी सीखा था उसका निष्कर्ष हिरण्यकश्यपु को बताया कि भगवान ही एकमात्र शाश्वत सत्य हैं, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का अनुसरण और उनके को अपना समर्पण, यही एकमात्र मानव का कर्तव्य है। तो चिढ़ गया और उसने अपने वेतनभोगी पुरोहितों को सौंपा कि इसको मेरे पुत्र के अनुरूप शिक्षा प्रदान करो, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का मालिक मैं ही हूं, मैं ही नियंता हूं, मैं ही इसका भोक्ता हूं, मैं ही शासता हूं और मैं ही जो है उसका संपूर्ण नियमन करता हूं। ये बताओ इसको। 6 महीने के पश्चात, उसको अंग्रेजी में सेमेस्टर कह सकते हैं, प्रहलाद जब वापिस आए और उनको पिता ने पूछा कि बोलो 6 महीने में क्या सीखा, प्रहलाद ने कहा जो कल सत्य था वो आज सत्य है, आज सत्य है वो कल सत्य रहेगा। सत्य प्रासंगिक नहीं होता, परिस्थितियां बदलती हैं। हर परिस्थिति में पानी की जरूरत रहेगी, हर परिस्थिति में आग की जरूरत पड़ेगी, हर परिस्थिति में धरती की जरूरत पड़ेगी, हर परिस्थिति में वायु की, जल की, सबकी आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार से हर परिस्थिति में ज्ञान की, निर्मल ज्ञान की व्यावहारिकता, कल भी वही व्यावहारिकता थी, यानी मानवता के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो कैसे बदलेंगे, और संसार में आचरण करने की जो नीति है वो भी कैसे बदलेगी। उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, आदर करने के तरीके बदल सकते हैं, सम्मान के तरीके बदल सकते हैं, शिष्टाचार के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो तरीके हैं, उपाय हैं जीवन जीने की, का जो किस प्रकार से जिया जाना चाहिए, मुझे सबसे बड़ा जो हर्ष होता है समर्थ के साहित्य का अवगाहन करके, वो ये है कि शेष गुरु केवल ब्रह्म और माया और जीव और परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हैं और वेदांत की चर्चा करते हैं, दर्शन का की चिंता करते हैं, लेकिन व्यावहारिक जीवन, दिव्य जीवन की बात तो करते हैं लेकिन व्यावहारिक जीवन की चर्चा नहीं करते। लेकिन समर्थ सद्गुरुदेव का संपूर्ण उपदेश जीवन में हर क्षण प्रासंगिक रहता है और ऐसा अनुभव होता है जैसे वो हमको देख करके ही हमका हमारा मार्गदर्शन कर रहे हों। ये दासबोध की एक एक ओवी 20 दशकों में जो समास, 10-10 समास एक एक शतक में, दशक में गुरुदेव ने रखे हैं, उन समासों की एक एक ओवी जो है वो व्यावहारिक ज्ञान से, व्यावहारिकता से भरी हुई है। कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो कैसे MBA क्लियर करना चाहिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सीखना चाहिए, इंजीनियरिंग कैसे कंप्लीट करनी चाहिए, फिर इंजीनियरिंग के भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं तो उन, और फिर मेडिकल साइंस, उसके भी अलग अलग विभाग हैं, तो उन सब को, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उसको किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए संसार में, ये बताने का कष्ट किसी भी गुरु ने नहीं किया। जो बड़े बड़े गुरु हैं, जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, ब्रह्मांड गुरु हैं, उन लोगों ने कभी इस बात पर, व्यावहारिकता पर का चिंतन नहीं किया, चर्चा नहीं की। केवल समर्थ सद्गुरुदेव ने, रामदास महाराज ने, ये जो नवनीत है संसार में आने के पश्चात मृत्यु पर्यंत और मृत्यु के बाद भी मनुष्य को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। अब ये आर्ट ऑफ लिविंग जैसी जो चीजें हैं वो आज पैदा हुई हैं, लेकिन गुरुदेव ने ये कंप्लीट दासबोध आर्ट ऑफ लिविंग है, विश्वकोश है, ये मानवीय व्यवहार की इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है। इसलिए ये प्रश्न उठाना बिल्कुल बिल्कुल व्यर्थ है कि 400 साल की पूर्व की स्थितियां और आज की स्थितियां, बिल्कुल स्थितियां बदल गई हैं, और अत्यंत आश्चर्य की बात है कि आज की स्थितियों में भी दासबोध का एक एक निर्देश बिल्कुल 52 तोला पावरत्ती, यानी एक एक राई रत्ती बिल्कुल समीचीन है, व्यावहारिक है, सार्थक है, सटीक है। और हम, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि उसके अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते यनायो, समर्थ का बताया हुआ रास्ता ही एकमात्र रास्ता है, उसके अलावा, क्योंकि रास्ते 10-20-50 नहीं होते। ये जो एक नई भ्रांति पैदा हुई है कि सारे रास्ते ना, बिल्कुल नहीं, चोर का रास्ता, व्यभिचारी का रास्ता, तस्कर का रास्ता, मिलावटखोर का रास्ता, गिरगिट किस्मान रंग बदलने वाले राजनीतिक नेता का रास्ता, और प्रांतीयता के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, उपजाति के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर जहर घोलने वालों का रास्ता, और संतों का रास्ता, सत्पुरुषों का रास्ता, परोपकारियों का रास्ता, निष्प्रिय और निष्काम महापुरुषों का रास्ता, ये बिल्कुल भिन्न है। और परमात्मा केवल एक ही रास्ते से प्राप्त की जा सकते हैं, और वो रास्ता है सत्कर्म, और सत्कर्म के अलावा भगवान को प्रसन्न करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है, न पुरुषचरण है, न जप है, न तप है, न यज्ञ है, न योग है, केवल सत्कर्म, केवल सत्कर्म। इस प्रकार के कर्म जिसके द्वारा हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हो, और वो सत्कर्म क्या है, किस प्रकार के हैं, ये केवल दासबोध बताता है और किसी गुरु का कोई ग्रंथ नहीं बताता। इसलिए केवल समर्थ और केवल दासबोध यही व्यावहारिक है, बाकी सब कुछ वायवीय है, यानी हवाई है। धरती पर पैर न रख करके केवल हवाई हवा में उड़ना और यह अनुभव करना कि हम गगन विहारी हो गए हैं, तो धर्म जो है वो गगन विहारी नहीं होता। धर्म की जड़ें जो होती हैं वो धरती पर वास्तविकता पर, कल्पना में नहीं होती है, जो हकीकत है जिसको उर्दू में हकीकत कहते हैं, और उसकी सख्त जमीन पर सत्य के कल्पवृक्ष की जड़ें रोपी जाती हैं, फैलाई जाती हैं, और वही कल्पवृक्ष मानवता का कल्याण करता है।
आचार्य जी, शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास के बारे में आजकल बहुत चर्चा है, आपके इस बारे में क्या विचार है?
मैं पुनः पुनः ये कहना चाहूंगा कि अब तो इस प्रकार का जमाना आ गया है कि जो इतिहास है वो केवल मुगलों से शुरू होता है और नेहरू गांधी परिवार पर आकर खत्म हो जाता है। पहले अंग्रेज जब आए तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सभ्यता हम ही लाए, शिष्टता हम ही लाए, दुनिया भर में जितना सिविलाइजेशन है, जितना ज्ञान विज्ञान है, वो सब केवल हमारी देन है और हमसे ही सभ्यता शुरू होती है, और हम अगर नहीं रहे तो सभ्यता खत्म हो जाएगी। ये उन लोगों का हाल है जो यानी चारों ओर से समुद्र से घिरे हुए, यानी ब्रिटिश चैनल एक तरफ, फ्रांस का दूसरी तरफ, फिर लंबा चौड़ा महासागर, और उसमें पानी की कोई कमी नहीं। अमेरिका की भी ये स्थिति है, सारा वेस्टर्न जो ज्ञान विज्ञान जिसके वो ठेकेदार बने हुए हैं, वो उन लोगों का ये फतवा है जो लोग मलमूत्र विसर्जन करने के पश्चात पानी तक का इस्तेमाल नहीं करते, कागज से पहुंचकर काम चला लेते हैं। जैसे कुत्ते जब सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और छी छी मुती करते हैं, तो वो कहीं घास फास ढूंढते हैं और वहां पर जो है वो अपना घिस घिसा करके नीचे का जो भाग है उसको पवित्र करके और पवित्रता का ढोंग पालते हैं अपने मन में। तो उन लोगों का कहना है कि सभ्यता हम ही लाए, संस्कृति हम ही लाए, कल्चर हम ही लाए, सिविलाइजेशन हम ही लाए, हमारे पहले कुछ नहीं था, हमारे पहले अंधकार था, और कितने साल पहले साल की प्रगति है, ये कुल जो है 2000 साल का सारा खेल है। ये तमाशा, एक तमाशा है 1400 साल, 1450 साल का, और एक 2009 साल पुराना तमाशा है। और उनका ये कहना है कि अगर ईसा न होते तो कुछ नहीं होता, बाइबल न होती तो कुछ नहीं होता, और अगर कुरान न होती तो कुछ नहीं होता, जो कुछ हुआ वो हमसे हुआ, हमारे पहले कुछ नहीं था, न अजंता था, न खजुराहो था, न कोणार्क था, न जगदीशपुरी था, और न जो है वो वेद थे, न उपनिषद थे, न पुराण थे, और ये न गिनती थी, गणना भी नहीं थी। जबकि हकीकत यह है कि गिनना, जो काल जिसको गिना नहीं जा सकता, जो बिल्कुल असीमित है, अनलिमिटेड है, उस काल का भी विभाजन हमने किया, और ये अनंत कोटि ब्रह्मांड एक शब्द है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक शब्द का प्रयोग करना, यह अपने आप में वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान संपन्नता का परिचायक है। यानी हमारे जो ऋषि महर्षि हैं, अनसिविलाइज्ड लोग जो हैं हमारे पुरखे, वो आज के करोड़ों अरबों साल पहले जानते थे कि ब्रह्मांड एक नहीं है, अनेक हैं, अनंत हैं, और उसमें आकाशगंगाएं अनंत हैं और ब्रह्मांडों का अनंत विस्तार है। तो परंतु फिर भी अंग्रेजों का यह दावा है कि बस वही सभ्यता के एकमात्र ठेकेदार हैं, उसके पहले सभ्यता कहीं थी नहीं। उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास लिखवाए, मुगलों ने अपने हिसाब से इतिहास लिखवाए, और वो स्वतंत्र होने के पश्चात भी मानसिक गुलामी इस हद तक है कि जब इतिहास ऐतिहासिक फिल्में बनती हैं तो अकबर और मुगल खानदान के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। मुगले आजम जैसी फिल्में बनती हैं, जोधा अकबर जैसी फिल्में बनती हैं, ताजमहल जैसी फिल्में बनती हैं, और वो बताने की कोशिश करते हैं कि बस 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 जो भी कुछ हुआ वो सब केवल मुगलों ने किया, उसके पहले न चंद्रगुप्त थे, न चाणक्य थे, न अशोक थे। तो बड़ी गलती है संविधान के निर्माताओं की कि उन्होंने जो है वो अशोक चिन्ह को, सत्यमेव जयते को, तीन सिंहों के अशोक चक्र को और अशोक स्तंभ को अपना क्यों राष्ट्रीय सिंबल बनाया, उनको मुगलों के किसी बेगम के बुरके को या किसी मुगल सम्राट की दाढ़ी को अपना सिंबल बना लेना चाहिए था, और वहीं से शुरुआत करनी चाहिए थी। तो जिन लोग जो इस प्रकार के लोग हैं, हल्दी की गांठ लेकर के चूहे, उनका स्वार्थ है इसमें कि जो वास्तविक ज्ञान है, जो वास्तविक इतिहास है, उसको दबा कर रखा जाए। तो बहुत बड़े बड़े मिथक उन्होंने स्थापित किए। एक तो यह कि आदमी बंदर की औलाद था, दूसरा मिथक यह कि आर्य लोग जो हैं भारत में कहीं बाहर से आए थे। एक भी अंतर साक्ष या बहिरी साक्ष कहीं मिलता नहीं है और कोई माई का लाल ये बताने की कोशिश नहीं करता कि आर्य लोग अगर बाहर से आए थे तो कहां से आए थे। और इतनी बड़ी विशाल जो जाति थी, ज्ञान विज्ञान संपन्न जाति, जिसने वेद दिए, जिसने महाकाव्य दिए, जिसने कविता दी, जिसने कला दी, जिसने संस्कृति दी, जिसने आर्ट दिए, जिसने संपूर्ण कृषि विज्ञान दिया, जिसने सारा ज्ञान विज्ञान दिया, कोड एंड कंडक्ट दिए, स्मृतियां दी, वो जाति आखिर कहां से आई थी? वहां कुछ न कुछ तो उसका चिन्ह होगा, बताने के लिए तैयार नहीं है। मुगल कहां से आए इसका प्रमाण मिलता है, तुर्क कहां से आए प्रमाण मिलता है, तातार कहां से आए प्रमाण मिलता है, लेकिन इतनी बड़ी जाति आ गई और उसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता है कहां से आई, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो तो कहते हैं आर्य लोग बाहर से भटकते हुए यहां पर आए थे। तो जो इतना बड़ा हिमालय जैसा असत्य हमारे माथे पर थोप रहे हैं केवल अपनी धूर्तता की दुकान चलाने के लिए, उनको कैसे सुहाएगा कि वो समर्थ और शिवाजी महाराज की जो ये का जो युग्म है, यानी विश्व में एक अद्वितीय गुरु शिष्य की जोड़ी है। यानी मैं चाणक्य राम और चंद्रगुप्त को भूल नहीं रहा हूं, चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी भी बड़ी बेजोड़ जोड़ी है, लेकिन चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी में एक अंतर है समर्थ रामदास और शिवाजी महाराज की जोड़ी में और चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी में, कि चाणक्य ने जब एक सामान्य लड़के को धूल से उठा करके और आर्यावर्त के शीर्ष सिंहासन पर स्थापित कर दिया और उनके कारण ही सेल्यूकस जैसे महा अहंकारी सेनापति ने, ग्रीक सेनापति ने अपनी कन्या चंद्रगुप्त को प्रदान की। इतना विराट यानी अचीवमेंट पाने के बाद, उपलब्धि पाने के पश्चात चंद्रगुप्त को भी अहंकार हो गया और जब ये देखा चाणक्य ने कि ये अहंकार हो गया है तो उन्होंने छोड़ दिया कि जा मुझे तेरी जरूरत नहीं है और तुझे मेरी आवश्यकता नहीं तो मुझे भी तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। तो चाणक्य चंद्रगुप्त को बोध हुआ और वो चरणों में जाकर गिरे। लेकिन यहां तो शिवाजी महाराज को अंतिम समय तक कभी समर्थ के प्रति या अपने पुरुषार्थ के प्रति कोई अहंकार हुआ नहीं। समर्थ के भक्त के मन में कभी अहंकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से सद्गुरुदेव समर्थ बेजोड़ हैं, अद्वितीय हैं, अनुपम हैं, उसी प्रकार से उनके परम कृपा पात्र उनसे दीक्षित और उनके विनम्र समर्पित शिष्य छत्रपति शिवाजी महाराज भी संसार में बेजोड़ हैं। उनकी टक्कर का कोई दूसरा महापुरुष राजनेता आज तक नहीं हुआ, क्योंकि वो हुक्मरान नहीं है, वो तानाशाह नहीं है, वो डिक्टेटर नहीं है, वो फ्यूहरर नहीं है, वो केवल समर्थ के सपनों को पूरा करने के लिए भगवान को समर्पित, राजनीति उनके लिए केवल एक सेवा का माध्यम है। और अक्षरशः किसी को अगर इस बात में संदेह होता हो तो रायगढ़ के दुर्ग में जाकर देखना चाहिए, वो दुर्ग जो है वो ऐशो आराम के लिए है ही नहीं, कोई तपस्वी ही वहां पर जाकर के तपस्या कर सकता है। तो शिवाजी महाराज की और समर्थ रामदास महाराज की भेंट कभी हुई नहीं और उनसे उनका कोई संबंध ही नहीं था। ऐसा कहने वाले लोग कल को ये भी कहेंगे कि हनुमान का और भगवान श्री राम का कभी कोई संबंध हुआ ही नहीं, उनकी आपस में कभी कोई मुलाकात ही नहीं हुई, और हनुमान भगवान जो हैं वो श्री राम से द्वेष रखते थे और उनकी सहानुभूति संपूर्ण रावण के साथ थी, बीच में लाचारी से उन्होंने विभीषण को जो है स्वीकार कर लिया। तो ये जो इस प्रकार के जो लोग हैं जिनका कोई आधार नहीं है, जिनके पास कोई तर्क नहीं है, तमाम साहित्यिक दस्तावेज अंतर साक्ष बहिर्साक्ष पुकार पुकार करके शंख नाद कर करके कह रहे हैं कि समर्थ गुरुदेव की छत्र छाया में, समर्थ गुरुदेव से प्रेरणा प्राप्त करके, समर्थ गुरुदेव के पदचिन्हों पर चल करके शिवाजी महाराज ने और उनके अनुगामियों ने, पेशवाओं ने, सिंधियाओं ने, होलकरों ने, गायकवाड़ों ने हिंदूपद पादशाही की स्थापना के लिए दिल्ली की ओर कूच किया और वे सफल भी हुए। लेकिन हिंदू जाति की फूट ने उनको सफलता, वो सफलता जो थी वो क्षणिक सफलता थी, वो फूट आज भी है। आज भी शिवाजी महाराज का नाम लेने वाले लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के कपड़े नोच रहे हैं, उनके आपस में बनती नहीं है, वो एक दूसरे को फूटी आंखों देखना पसंद नहीं करते। तो ये जमाना कैसा भी आए कैसा भी जाए, पहले भी स्वार्थी थे आज भी स्वार्थी हैं, लेकिन ये स्वार्थ की पराकाष्ठा है कि ये हिमाकत करना कि शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास का कोई संबंध ही नहीं था। तो महाराष्ट्र का चप्पा चप्पा, एक एक कण, सह्याद्री पर्वतमाला की एक एक चोटी और एक एक दुर्ग शिवाजी महाराज के द्वारा जीता हुआ और समर्थ के चरणों में समर्पित किया हुआ, और तमाम संत साहित्य इस बात की पुकार पुकार करके साक्षी देता है कि शिवाजी महाराज और समर्थ गुरुदेव अभिन्न थे, यानी गुरु शिष्य नहीं थे, एक ही शरीर के ने दो देह धारण किए थे। और ये गुरु शिष्य परंपरा संसार की सबसे बड़ी इस प्रकार की जोड़ी है जो इस पर सारे संसार को अपनी दरिद्रता का बोध होता है, क्योंकि न इंग्लैंड के पास, न अमेरिका के पास, न फ्रांस के पास, न कनाडा के पास, संसार के किसी देश के पास, न रूस के पास, न जापान के पास, न चीन के पास, न कोई शिवाजी है और न कोई समर्थ है, और नहीं है, इसीलिए उनको जो है वो ईर्ष्या होती है। तो उन्होंने अपने पैसे फेंक फेंक करके यहां पर जो चाटुकार चमचे खड़े किए हैं उनका एक ही काम है, अंग्रेजों का एक काम था फूट डालो राज्य करो। चर्चिल ने कहा था कि ये लोग आजादी पाने के योग्य नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के कपड़े नोचेंगे, एक दूसरे को कुत्तों की तरह नोचेंगे और ये लड़ेंगे आपस में। तो वो करके हमने दिखलाया, 63 साल के बाद भी अंग्रेजी हमको लड़वा रही है क्योंकि माथे पर अंग्रेजी बैठी हुई है, और अंग्रेजी और अंग्रेजियत और अंग्रेजों की धूर्तता उसके ये परिणाम है। कहां से पैसा आ रहा है, कहां से प्रेरणा मिल रही है, अफजल खान की परंपरा को संचालित करने वाले लोग और शिवाजी महाराज के मूलभूत आदर्शों की हत्या करने वाले लोग, जो शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज के रूप में नहीं देखते, उनको अपनी एक क्षुद्र जाति, एक छोटी सी जाति, एक सीमित जाति के प्रतीक के रूप में देखते हैं, तो शिवाजी महाराज के बारे में जानना चाहिए कि शिवाजी महाराज किसी एक जाति उपजाति के प्रतीक नहीं है, वो संपूर्ण मानवता के उद्धारक हैं, हिंदुत्व के उद्धारक हैं, हिंदू पदपादशाही यानी मानवता का महासाम्राज्य। और ये प्रेरणा जो है वो समर्थ गुरुदेव की प्रेरणा और शिवाजी महाराज दोनों अभिन्न हैं। सत्यमेव जयते नान्द्रताम, केवल सत्य की ही जय होती है। अंततो गत्वा ये सारे के सारे भ्रम और सारी भ्रांतियां समाप्त हो जाएंगी, और अंततो गत्वा शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास महाराज का जो मार्ग है वही संसार को और हिंदू राष्ट्र को अभ्युन्नति के शिखर पर पहुंचाएगा।
आपकी दृष्टि में आचार्य जी, श्री समर्थ किन अर्थों में राष्ट्रगुरु है, और अगर उन्हें राष्ट्रगुरु माना गया तो विश्व मानवता के लिए उनका क्या योगदान है?
यह राष्ट्र जो है वो संसार का सबसे प्राचीन राष्ट्र है। सबसे पहले तो बात यह समझना चाहिए कि राष्ट्रगुरु शब्द जो है वो न फ्रेंच में है और न लेटिन में है और न इंग्लिश में है और न अमेरिकी भाषा, तो कोई स्वतंत्र भाषा ही नहीं है। संसार की किसी भाषा में न तो राष्ट्र होता है और न गुरु होता है, और टीचर से और मास्टर से और ट्यूटर से, लेक्चरर से और प्रोफेसर से ये गुरु शब्द की जो व्याप्ति है वो परिभाषित होती नहीं है। गुरु तो गुरु है, परमात्मा का प्रतीक है, वो केवल देता ही देता है, लेता नहीं है, उसको किसी प्रकार की कामना नहीं होती, और कोई अगर देना चाहे तो उसको कोई दे नहीं सकता। जैसे सूर्य को कोई हम देना चाहें तो हम दे नहीं सकते, हम जरूर जल का लोटा चढ़ाते हैं भगवान सूर्य को, लेकिन सारे के सारे सात सात महासागरों के जल को अपनी किरणों के द्वारा खींचने वाले, आकृष्ट करने वाले और बादल बना करके हमको हमारी प्यास बुझाने वाले सूर्य को हम क्या दे सकते हैं? केवल कृतज्ञता अर्पित करते हैं कि भाई आप इतना हमको इतना नहला रहे हैं, इतना जिला रहे हैं, इतना दिख रहे हैं, तो चलिए एक ये चुल्लू भर पानी आपको हमारी ओर से कृतज्ञता का अर्घ है। बाकी हम सूर्य को क्या दे सकते हैं? जैसे सूर्य को हम कुछ नहीं दे सकते, उस प्रकार से गुरु को भी हम कुछ नहीं दे सकते। गुरु शब्द की व्याप्ति परमात्मा, यानी इसके लिए भी दासबोध पढ़ना चाहिए, और उन्होंने जहां जहां लिखा है वहां स्वयं को दास और गुरु के रूप में परिभाषित जो किया है वो साक्षात परमात्माओं की परिभाषित किया है। तो गुरु जो होता है वो परमात्मा का प्रतिनिधि होता है, और राष्ट्र शब्द जो है वो वेदों के अलावा कहीं नहीं है, और नेशन में राष्ट्र की व्याप्ति होती नहीं है। नेशन का मतलब होता है कोई राजनीतिक इकाई, उसको जब वो लैंड और कंट्री कहकर के संतुष्ट नहीं होते और उस लैंड और कंट्री के ऊपर कोई राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाती है तो कहते हैं ये नेशन हो गया, लेकिन नेशन नहीं। नेशन में और राष्ट्र में जमीन आसमान का फर्क है। राष्ट्र एक आध्यात्मिक सत्ता है और नेशन एक पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है। राष्ट्र में क्या है? राष्ट्र अपना राष्ट्र यानी अपना देश की धरती होनी चाहिए, देश की परंपरा होनी चाहिए, देश की संस्कृति होनी चाहिए, देश का धर्म होना चाहिए, और संस्कृति देश की और जाति देश की, ये सब चीजें, अपना देश, देश की भाषा और देश का धर्म, संस्कृति और जाति, ये सारे के सारे अपने अपने हों तब राष्ट्र का निर्माण होता है। और उसकी हमने जो व्याख्या की है, वेद ने जो व्याख्या की है, तो वो सीमा रेखा हमारे स्वस्ति वाचन में कहा जाता है कि समुद्र पर्यंत स्वस्ति समुद्र पर्यंताया एक राडिटी, यानी हिमालय से लेकर के आसिंधु सिंधु पर्यंता जो भारत भूमि है ये सीमा रेखा है हमारे पावन राष्ट्र की, डिवाइन नेशन की। और ये पावन जो सीमा है ये किसी पटवारी के द्वारा या किसी आर्किटेक्ट के द्वारा या किसी हुक्मरान के द्वारा बनाई हुई नहीं है, ये स्वयं परमात्मा ने बनाई है। परमात्मा के अलावा इस सीमा रेखा को कोई बना नहीं सकता। तो ये राष्ट्र जो है वो स्वयं अपने आप में जगतगुरु है, और जो जगतगुरु राष्ट्र है उसका गुरु बनना, उसका मार्गदर्शन करना, उसकी जाति का, उसके समाज का मार्गदर्शन करना, जिसने भारत का गुरुत्व कर लिया वो भी एकमात्र मानवता का गुरु बनने की योग्य है। क्योंकि दुनिया की सारी कौमें, सारी कम्युनिटी, सारी बिरादरियां, सारे कबीले, मैं समाज नहीं बोलूंगा, कबीले, वो सब के सब जो हैं वो एक दूसरे की बोटियां नोचने में और एक दूसरे को परास्त करने में और एक दूसरे को नेस्त नाबूद करने में लगे हुए हैं। केवल हमारी भारत माता और उनकी संतानें और उसके जो अग्रजन्मा हमारे पूर्वज हुए हैं वही एकमात्र हैं जो सारे के सारे संसार को एक कुटुंब के रूप में देखते हैं, और उस विशाल कुटुंब को, वत्सलता वात्सल्यपूर्ण कुटुंब को जो मार्गदर्शन कर सकता हो, जो उसका गुरु बन सकता हो, वही एकमात्र सारे के सारे संसार का, पूरी मानवता का गुरु बनने के लिए सक्षम है। जो भारत का गुरु नहीं है वो विश्व का गुरु हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रासंगिकता का जहां प्रसंग आया है वहां पर एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि केवल 75 साल केवल कम्युनिज्म चला। अब मार्क्स ने बड़ी आंधी के तूफान के समान जो है अपना कैपिटल लिखा था, और उस कैपिटल में ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया की सारी समस्याओं का पूरा समाधान कैपिटल में समाविष्ट कर दिया गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि वहां कैपिटल को आज कोई 4 आने किलो 25 पैसे किलो की रद्दी के भाव भी रूस में खरीदने के लिए तैयार नहीं है। चीन में भी मार्क्सवाद की इतिश्री हो गई है, लेकिन फिर हम गर्व के साथ कहेंगे कि रामायण प्रासंगिक है, महाभारत प्रासंगिक है, गीता प्रासंगिक है, वेद प्रासंगिक है, उपनिषद प्रासंगिक है, और उन सब का सार जिसमें समाया हुआ है वो ग्रंथराज, दास बोध, हमारी ज्ञानेश्वरी, हमारी भावार्थ रामायण, यही प्रासंगिक हैं और कोई प्रासंगिक नहीं है। और इसलिए राष्ट्रगुरु समर स्वामी रामदास महाराज जो हैं वही यथार्थ में विश्व गुरु बनने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनका दासबोध कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये जो मैं सारे लक्षण और सारी की सारी विवेचना कर रहा हूं ये भारत के लोगों के लिए है, वो तो सारी मानवता के लिए संदेश है। इसका जितना जितना प्रसार होगा, जितना लोग पढ़ेंगे अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि अच्छी चीज को अपनी प्रशंसा करने की, विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं होती। विज्ञापन करने की, ढोल बजाने की, ढोल पीटने की जरूरत जो होती है वो नक्कालों को होती है, मिलावटियों को होती है, और जिनके पास कुछ नहीं होता उनको जो है गला फाड़ फाड़ कर कहने की जरूरत पड़ती है कि यह है, यह है, यह है, इसको खरीदिए, इसको खरीदिए, इसको खरीदिए। बाकी जो स्वयं जागृत है और चमत्कृत है, अमृतमय है, उसको विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है।
समर्थ साहित्य के बारे में समर्थ भक्तों के लिए आप क्या उपदेश करेंगे?
जितने समर्थ भक्त हैं उनको आपस में अपने क्षुद्ध स्वार्थों के लिए लड़ना छोड़ देना चाहिए। यथार्थ रूप में ग्रंथराज दासबोध को हमने ग्रहण किया है और हमने उनसे प्रेरणा प्राप्त की है, यह प्रमाणित करना चाहिए, अपने आचरण के द्वारा प्रमाणित करना चाहिए। जो ईर्ष्या से मुक्त नहीं है, जो द्वेष से मुक्त नहीं है, जो वैर से मुक्त नहीं है, जो दंभ से मुक्त नहीं है, जो अहंकार से मुक्त नहीं है, उसको समर्थ भक्त कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। समर्थ भक्तों को संगठित होना चाहिए, और समर्थ भक्तों को संगठित करके जो समर्थ लोग हैं, सक्षम लोग हैं, उनको एकत्र करके उनकी सहायता से सारे संसार की समस्त भाषाओं में समर्थ गुरुदेव के साहित्य का अनुवाद, और सारी वेबसाइटों पर और सारे के सारे जितने चैनल्स हैं उन सब पर संसार की सभी भाषाओं में दासबोध, मनाचे श्लोक और आत्माराम और ये जो भी समर्थ का वांग्मय है, साहित्य है, वो सुलभ हो और उसके बारे में सारा का सारा संसार जो है वो जानकारी प्राप्त करे, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है समर्थ भक्तों का। समर्थ भक्त अर्थात निर्मल हों, निर्द्वेष हों, निर्वैर हों, ईर्ष्या से मुक्त हों, और सबसे बड़ी बात निर्भय हों। उनमें अगर निर्भयता नहीं है तो फिर सारी चीजें बेकार हैं। निष्प्रियता, निर्भयता, निर्वैरता, निष्कामता और कर्मण्यता, और एक लक्ष्य बना करके कि हमें सारे संसार के अंधकार को दूर करना है और विश्व मानवता को समर्थ का संदेश पहुंचाना है। इस कार्य के लिए केवल वन पॉइंट एजेंडा, केवल एक लक्ष्य। चिड़िया की आंख के अलावा जैसे अर्जुन को कुछ नहीं दिखाई देता था, वैसे समर्थ भक्तों को भी समर्थ के विचारों के प्रचार प्रसार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। यही मेरी अपेक्षा है और यही मेरा सुझाव है।
धन्यवाद आचार्य जी। मुझे विश्वास है कि सारे समर्थ भक्त आपके उपदेश वचन आचार में लाएंगे और उससे समर्थ भारत बनाने में सभी कामयाब होंगे।